हरे कृष्णा। मैं एक बात आप सबसे पूछने को सोचा था। मैं जब शुरू शुरू में जब आए थे तब हम हर रविवार को संडे फीस्ट मनाता था, तो ये संडे फीस्ट यहाँ आने के बाद संडे फीस्ट बंद हो गए हैं। बंद होने का कोई कारण भी है क्योंकि दोपहर से रात शाम को अधिक आदमी आते हैं और दोपहर को ऐसे यहाँ संडे फीस का एक मुश्किल ये भी हो गया है कि कहीं बैठा के उनको प्रसाद देने का थोड़ा असुविधा हो रहा है। व्हाट वाज द मेन अदर रीजन आज के कारण क्या मुश्किल संडे फीस? तो ये आप क्या सोचते हैं, ये जो प्रोग्राम है ये शुरू होना चाहिए या जैसा है वैसा ही? अब यहाँ क्या करते हैं, शाम को सबको प्रसाद बांटते हैं। यहाँ आने के बाद हम हर शाम को खिचड़ी प्रसाद बांट रहा था, तो आप कौन से प्रसाद बांट रहे हैं?
हलवा खिचड़ी होती
शाम को हर व्यक्ति को मिलता है, तो वैसे केवल संडे फीस्ट को नहीं बना अलावा हम हर रोज शाम को प्रसाद बांट रहे हैं। यहाँ सारा दिन तो आप लोग क्या सोचते हैं, संडे फीस्ट शुरू होना चाहिए? संडे फीस्ट आई ভাবছিলাম संडे फीस्ट তাহলে মন্দিরের উপরে সাজ করলে কেমন হবে, ছাদের উপরে? কি বল, তুমি কি বলছো? কেন এছাড়া তো জায়গা নেই, এক যদি অডিটোরিয়ামে না
অডিটোরিয়াম ক্লাসের পরে যারা ক্লাসে থাকবে তারাই প্রসাদ পাবে, নাহলে ক্লাস এখানে হওয়ার পরে প্রসাদের ওখানে যাবে আবার।
তাহলে অডিটোরিয়ামে ক্লাস হোক আর অডিটোরিয়ামে
প্রসাদ, যারা ক্লাস শুনছে তারা প্রসাদ পাবে।
तो हम संडे फीस फिर से शुरू करेंगे
अगले संडे जगन्नाथ मिश्र उत्सव
नेक्स्ट संडे। गौर पूर्णिमा के बाद, गौर पूर्णिमा है 3 तारीख शनिवार को और रविवार को जगन्नाथ मिश्र का उत्सव है, और उस दिन से हम फिर से संडे फीस्ट शुरू करेंगे। और जब हम महानंदा में थे कम्युनिटी हॉल में, तो शुरू शुरू में बहुत सारे आदमी आता था संडे फीस्ट के लिए। शायद कुछ आदमी को मन में कुछ ये भी था, चलो देख के आते हैं इसका क्या कर रहा है। बल्कि धीरे धीरे वो उनका संख्या कमने लगा और ये संडे फीस्ट का जो क्लास जो है उसमें बहुत कम आदमी आ रहा था, क्लास में कम आदमी आ रहा था और प्रसाद के लिए बहुत आदमी। तो इसलिए गंगानारायण कह रहे हैं कि जो क्लास में रहेंगे उनको ही प्रसाद मिलेगा, तो संडे फीस हम ऑडिटोरियम में करेंगे, ऑडिटोरियम में भी लेक्चर भी होगा और लेक्चर के बाद प्रसाद वहां पर भी होगा। राहुल ठीक है, और ये यहाँ कैसा लग रहा है, प्रचार बढ़ रहा है या कम रहा है? बढ़ रहा है। ज्योति तुम सर हिला रही हो, अच्छा बढ़ रहा है, तुम आ रही हो, ओके। थोड़ा दूर हो गए ना, बल्कि आप लोग तो आते हैं ऐसे जो नियमित रूप से आप बहुत भक्त लोग आते हैं, आ रहे हैं, और मंगल आरती के समय में बहुत अच्छा लगता है कि जब देखते हैं कि आप लोग आए हैं। और मंगल आरती का गाड़ी जा रहा है मंगल आरती के लिए, कौन सी जगह में जाता है? दो जगह, तीन,
बहुत जगह,
बहुत जगह। कितनी दूरी तक जा, कितना दूर तक जा रहा है?
निश्चय बांगाली कॉलोनी को जैसे भक्तनगर बांगाली कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, ऋषिनगर, शास्त्री नगर, महानंदा नगर।
यहाँ बंगाली कॉलोनी है, सिंधी कॉलोनी है, और क्या है? और बाकी सब मालवा कॉलोनी है। पुरानी जी आप सब ठीक हैं? मंगल आरती आ रहे हैं?
कुछ दिन से बंद रहा, तबियत ठीक नहीं। हाँ, वृंदावन गया था लिखना, तो निमोनिया हो गया था वृंदावन।
क्या हो गया?
निमोनिया।
कितना दिन ठहरे थे बिंदा?
पांच दिन था।
रमेश जुनेश, तुम्हारा नाम मैं भूल गया। मदन,
या क्वीन ब्रदर मदन मोहन,
मदन मोहन। रमेश सबसे छोटा है, रमेश बड़े हैं। सब ठीक है? आपको हम नहीं देखते हैं इतना आजकल? माया कितना दिन ठहरे? 12-15 दिन।
वहाँ तो 3-4 दिन।
12-15 दिन के लिए उज्जैन से निकल गए थे। अच्छा, मायापुर में कैसा लगा?
बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। तो रहने में कोई असुविधा नहीं है?
नहीं,
वो अरेंजमेंट कर दिया था रहने को, यहाँ से करके
हॉस्पिटल के वहाँ मकान है, तो
उनके यहाँ। अच्छा, वहाँ ठीक है। अच्छा, हाँ मैं सुना था कि पुनीत मायापुर जाने वाला था, और मैं सोचा कि माँ गौर पूर्णिमा फेस्टिवल थे, तो कब से कब तक ठहरे थे?
15-13 तारीख।
वहाँ से 13 तारीख मैं था, मैं 15 तारीख को, मैं 14 तारीख को निकला। 14 तारीख
शाम को।
कितनी अर्ली मॉर्निंग थी?
Oh, you reached there. Oh, so I was not there. और महेश तुम कैसे हो?
हाँ,
आप आते हैं नियमित
रूप? हाँ, यहाँ रहता हूँ तो आता हूँ।
अच्छा, यहाँ यहाँ रहते हो, और बाकी समय काफी समय बाहर रहना पड़ता है। आपका इलाका कहाँ से कहाँ तक है?
खास तो ये दो जिले हैं, देवास और सीहोर।
अच्छा,
कभी कभी उधर राजगढ़ और एक दो जगह रखना हम लोगों ने।
माता जी आपको मैं बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, पुलकित के माता जी। हाँ, आप आते नहीं हैं?
आते हैं।
वहाँ तो हर रोज आते थे,
यहाँ
भी आते हैं हर रोज। अच्छे, बहुत अच्छे। और बच्चे लोग सब ठीक हैं? और ज्योति तुम्हारा, ये स्निग्धा तुम्हारा इम्तिहान हो गया है?
2 तारीख से
शुरू होने वाला, 2 मार्च को, और 3 तारीख होली है,
तो
गौर पूर्णिमा भी है, तो होली के समय परीक्षा होगा, तो तुमको होली नहीं खेलना। अच्छा, ये ठीक नहीं है, होली के लिए छुट्टी होनी चाहिए।
छुट्टी
होली वाला दिन छुट्टी है। दो तारीख के बाद कब?
दो तारीख के बाद 8 तारीख।
ओ अच्छा, तो पंचम क्या बोलते हो? पंचम रंग पंचमी कब है? रंग पंचमी 5 दिन के बाद अगर हुआ, 3-8 तारीख रंग पंचमी, 9 तारीख, तो 9 तारीख को इम्तिहान है, 8 को। ओ अच्छा, 2 तारीख है उसके बाद छुट्टी। और 8 तारीख के बाद कब है? 12 को। तो तुम होली खेल सकती हो और गौर पूर्णिमा भी मना सकती हो। तुम आते हो हर रोज? हाँ रेगुलर मंगल आरती में आते हो तुम? मैं माता जी को पूछ रहा था, तुमको नहीं देखा था, तो बोला माता जी ने बोला कि तुम कोई टूर में गया था।
एक दिन गए थे, आए थे, अच्छा। परसों गए थे।
ओ अच्छा,
बाकी आए थे कल भी यहाँ पर।
हाँ मैं पिछले बार जब आया था तो देखा आप हर रोज आते, बहुत अच्छा। और शाम को क्लास होता है क्या? शाम को
कितने? 8 से 9।
अच्छा, 8 बजे से 9 बजे तक
मॉनिटर बंद है।
अच्छा, तब क्या भगवत गीता की पढ़ाई होती है? भगवत गीता। मैं सोच रहा था कि शाम को ठीक है भगवत गीता का पाठ होता है। भगवत गीता कैसा लगता है? सब नियमित रूप में पाठ कर रहे हैं सब भगवत गीता? हाँ अच्छा। और भगवत गीता का जो विषय वो समझ में आ रहा है? भगवत गीता का मूल विषय क्या है? भगवत गीता का मूल विषय है आत्मा, ईश्वर, मतलब जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय के आधार पर भगवत गीता है। और हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसका विषय वैसे मूल विषय 3 होता है, जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। किसी ने आए हैं उनको अंदर लाने का कुछ? Get some chairs for them. Get a chair. Hare Krishna. Hare Krishna. एक कुर्सी ला रहे हैं आपके लिए। Keep it on the side.
This will cover.
How about you? आपका पिताजी?
Yes.
अच्छा। आप ये कहाँ रहते हैं?
जिन लोकल में रहते हैं।
लोकल में तो मंदिर में आते हैं?
हाँ।
अच्छा, बहुत धन्यवाद।
आपका
सामने मिला? ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप
सेकंड
डॉटर? अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका?
कुलमीत।
कुलमीत?
कुलमीत,
कुलमीत। अच्छा, कुल का मीत। बहुत अच्छा। तो भगवत गीता का 5 विषय है जीव या आत्मा, ईश्वर या भगवान या परमात्मा, प्रकृति, काल, काल का मतलब है समय, सब कुछ समय पर आधारित है, जो कुछ हो रहा है किसकी ऊपर, किसके आधार पर हो रहा है, जो कुछ है किसके आधार पर है, काल या समय के आधार पर, और कर्म, कर्म का मतलब है हम जैसे काम करते हैं, हम जैसे कार्य करते हैं उसका फल, उसके अनुरूप फल होता है। जैसे हर कार्य का एक फल हो रहा है हमारा, भला कार्य करने से उसका फल शुभ होता है, मंगलदायक होता है, और बुरा काम करने से उसका फल खतरनाक होता है। तो ये पांच विषय के बारे में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष रूप से जब हम समझ लेते हैं कि भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है, और जब उस संपर्क के आधार पर हम कार्य करते हैं, तो हमारा अस्तित्व, हमारा जन्म सार्थक होता है। सार्थक होता है मतलब जन्म का जो उद्देश्य है, हमारा अस्तित्व का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूर्ण होता है। इस विचार में और एक आध्यात्मिक व्यापार का, आध्यात्मिक मार्ग का प्रकाश होता है, जिसका जो तीन विषय के ऊपर आधारित है। एक है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब है हम जीव हैं, हम भगवान का अंश हैं, और भगवान के साथ, भगवान के अंश होने के कारण भगवान के साथ हमारा कैसी संपर्क है। और उस संपर्क हम कैसे स्थापन कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, वो जो प्रक्रिया जो है, उपाय जो है संपर्क जोड़ने का, उसे कहता है अभिधेय। और तीसरी विषय है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है जरूरत। जरूरत क्या है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का क्या आवश्यकता है, क्यों जोड़ेंगे। तो ये तीन विषय के जो चर्चा, ये है वैदिक दर्शन का आधार, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। गीता के माध्यम पहले ये सूचना हो रहा है, ये समझौता आ रहा है कि हम क्या है, हम कौन है। हम कौन है इसका मतलब है हम क्या हमारा शरीर है, या इसे छोड़कर और कुछ है। तो इसका भी उत्तर भगवद गीता में ऐसे हो रहा है जो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, उपलब्धि कर सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। जैसे हम ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा हम पहने हैं, वैसे ही हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर पहने हुए, हम शरीर से अलग हैं। और वो हम कौन है, वो हम है आत्मा। और ये आत्मा शरीर में रहने के कारण ये शरीर सजीव है, शरीर में जीवन है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है, मतलब शरीर से जीवन निकल जाता है। जिसे हम कहते हैं कि प्राण निकल गए। प्राण और आत्मा एक वस्तु नहीं, प्राण एक प्रकार वायु है, प्राण वायु, और इस प्राण वायु के आधार पर आत्मा शरीर में रहता है। ये प्राण वायु के माध्यम आत्मा शरीर में रहता है। तो जब ये प्राण वायु निकल जाता है तो उसके साथ साथ आत्मा भी निकल जाता है। और ये प्राण वायु शरीर में रहने के कारण आत्मा शरीर में है और शरीर में चेतना है या जीवन है। तो ये है पहला विचार, हम शरीर नहीं है, हमारा स्वरूप में हम है आत्मा। इसके पश्चात आत्मा का गुण का वर्णन हुआ। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है। ये आत्मा अविनाशी है, मतलब किसी प्रकार से भी आत्मा को विनाश संभव नहीं होता। ये शरीर का मृत्यु होने से भी आत्मा का विनाश नहीं होता। शरीर का नाश होने से भी आत्मा का नाश नहीं होता। यह शरीर से केवल आत्मा निकल जाता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, आत्मा अजय है, आत्मा जन्म रहित है, आत्मा का कभी जन्म नहीं। जन्म शरीर का होता है, अर्थात जब आत्मा एक नया शरीर ग्रहण करता है तब शरीर का जन्म होता है, और मृत्यु भी शरीर का होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है, पर आत्मा का न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होता है। आत्मा का कभी विनाश नहीं है, आत्मा नित्य है। ये है आत्मा का गुण। और ये आत्मा भौतिक जगत का वस्तु नहीं है, ये आत्मा आध्यात्मिक जगत से आया, चेतन जगत से आया, चिन्मय जगत से आया। और भगवान है सारे आत्मा का स्रोत। हम सब आत्मा हैं और हम सब भगवान से आए, भगवान का अंश है, बहुत क्षुद्र अंश है हम सब। भगवान असीम है परंतु हम सब सीमित हैं, जैसे सूरज और सूरज के किरण। सूरज के बहुत सारे किरण कण हैं, वो सारे किरण कण सूरज से निकल रहा है, और किरण कण का गुण भी सूरज का जैसा ही है। सूरज में ज्योति है, सूरज में ताप है, वैसे ही हर किरण कण में भी ज्योति है और ताप है, परंतु वो बहुत क्षुद्र है। और जब किरण जब और अगर स्रोत से अंश अगर स्रोत से अलग हो जाता है तो स्रोत का जो गुण है वो गुण को खो बैठते। हम सब भगवान का अंश हैं, भगवान का अंश होने के कारण भगवान के सारे गुण हम में भी हैं। परंतु जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, बिछोड़ जाते हैं, तब वो गुण हम खो बैठते हैं। और खोने के बाद हम भगवान में जो गुण हैं वो सारे गुण प्राप्ति के लिए हम कोशिश करते हैं। जैसे भगवान का गुण, एक गुण कैसा है कि भगवान नित्य है, भगवान का कभी नाश नहीं होता। भगवान ज्ञानमय हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान आनंदमय है। तो ये तीन गुण जो भगवान के पास भगवान का है, हम भी वो चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अमर बन जाएं, कोई मरना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि हम हमें सारे सब सारे विषय में हम जान सके, समझ सके, और हम चाहते हैं कि हम नित्य सदा सदैव आनंद प्राप्त हो सके। तो ये तीन चीज हम हर समय पाने का कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परंतु इस भौतिक जगत में अर्थात जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तब ये हमें प्राप्ति नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं पाने का परंतु मिल नहीं रहा है। क्यों मिल नहीं रहा है? क्योंकि भगवान का जो गुण है वो केवल भगवान के साथ युक्त होने से ही हम प्राप्त हो सकते हैं। जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो वो गुण प्राप्ति का कोई संभावना नहीं रहता। और जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं मतलब जब हम भगवान से मुंह फेरा लेते हैं, फेर लेते हैं, तब हम भगवान को नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? वो दूसरी तरफ उल्टी तरफ जो है उसको देखे, वो क्या है? भगवान से बाहर क्या है? भगवान का बहिरंग प्रकृति या माया। माया का वर्णन ऐसे किया जा सकता है, देखिए उस तरफ सूरज है, हम जब हमारा मुंह जब सूरज की तरफ रहता है तो हम क्या देखते हैं? हम सूरज को देखते हैं। अगर हम मुंह फेरा लेते हैं तो हम क्या देखेंगे? हाँ, तो अपना छाया देखेंगे, है ना? तो वो छाया में क्या सूरज का किरण है? तो जब तक हम अपना छाया को देखते रहेंगे तब तक हम सूरज का किरण नहीं देखेंगे। जब हम भगवान से मुंह फेरा लेते हैं तो हम क्या, ये अपना जो अपना कारण जो अंधकार का सृष्टि हो रहा है उसको देखते हैं। और वो अपने कारण जो अंधकार भगवान से मुंह फिराने के लिए जो अंधकार है उसको क्या कहा जाता है? वो है माया। ये भौतिक जगत में हमारा जो स्थिति ये है माई। हम क्या देख रहे हैं? हम सूरज को नहीं देख रहे हैं, हम किरण को नहीं देख रहे हैं। अपना किरण का जो स्वभाव है उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। हम और कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये शरीर को देख रहे हैं। ये शरीर क्या है? अपना छाया है, अपना स्वरूप का छाया है ये शरीर। तो अगर हम ये इस माइक अवस्था से हम मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना होगा? भगवान के ओर मुंह फिराना होगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, केवल उस तरफ से इस तरफ देखना होगा। और ये देखने का तरीका क्या है, कैसे हम मुंह फेरा सकते हैं? ये है अभिधेय। अभिधेय मतलब किस तरह हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। तो ये अभिधेय तत्व क्या है? ये अभिधेय तत्व है कि भगवान के प्रति भक्ति साधन करने से हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति हमारा हार्दिक प्रेम। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है उसका जब प्रयोग होता है उसे भक्ति कहा जाता है। और भगवान के प्रति हमारा प्रेम अर्पण होने से जो क्रिया स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है वो है भक्ति, और उसका नाम है सेवा। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उनको उनको आनंद विधान करने के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब ये वृत्ति प्रेम की ये वृत्ति जब भगवान के प्रति अर्पण होता है तब भगवान के लिए कुछ करने का इरादा होता है और वो है भक्ति या सेवा, जिसके देखिए इसका मतलब है, भक्ति का मतलब है प्रेम और सेवा, या भक्ति का मतलब है प्रेम मई सेवा, प्रेम पूर्ण जो सेवा है, प्रेम के प्रकाश के रूप में रूप स्वरूप जो सेवा है वो है भक्ति। जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, हर समय भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान का गुणगान करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
इसका मतलब क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे का मतलब है भगवान को आनंद दायिनी श्रीमती राधा, भगवान को आनंद विधान कारिणी राधा रानी। तो उनके शरण लेके, क्योंकि राधा रानी हर समय भगवान को आनंद विधान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो हाँ, इसीलिए हम भगवान को जब हम आनंद प्रदान करने का वासना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो हम राधा रानी के शरण लेते हैं। और कृष्णा, कृष्णा भगवान का ही नाम है, इसका मतलब क्या है, सर्वाकर्षक, आकर्षण करने का सारे गुण भगवान में पूर्ण रूप से विराजमान है। आकर्षण का कारण क्या है, किसकी प्रभाव से हम और किसी के प्रति आकृष्ट होते हैं, सुंदरता, सुंदर की सुंदरता हमें आकृष्ट करते हैं। तो भगवान सबसे सुंदर है, परम सुंदर है भगवान, जो शक्तिशाली हैं उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं। भगवान है सर्वशक्तिमान, जिसके पास दौलत है उसके प्रति हम आकृष्ट होते हैं। भगवान है सर्वैश्वर्यपूर्ण, सारे ऐश्वर्य सारे दौलत भगवान में, जिसमें बहुत यश है, जो व्यक्ति बहुत यशस्वी हैं उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं। तो भगवान पूर्ण जशोमय है, यश भगवान में ही पूर्ण रूप में विराजमान। जो व्यक्ति ज्ञानवान है उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं, भगवान है पूर्ण ज्ञानमय। और जो व्यक्ति त्यागी हैं उनके प्रति हम आकृष्ट होते हैं, और भगवान है परम त्याग। तो ये छह गुण जो हमें आकर्षण करते हैं, ये छह गुण पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान। तो ये भगवान सर्वाकर्षक है, सबको आकर्षण करने वाला है। परंतु जो अंधा है वो क्या सूरज को किरण दर्शन कर सकता है? वैसे ही जब तक हम अपना मुंह भगवान से दूसरे ओर हम देख रहे हैं तब तक हम भगवान की प्रति आकृष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की ये गुण का प्रकाश, भगवान का गुण का उपलब्धि अनुभव या इसका समझौता हम समझना हमारे लिए संभव। तब क्या होता है जब हम भगवान से भगवान के और नहीं देखकर दूसरे और देखते हैं, तब हम क्या देखते हैं, अपना छाया को ही देखते हैं। तब क्या होता है अपना छाया का प्रति प्रेम होता है भगवान के प्रति। हम वो छाया के देखे हम सोचते हैं कि इसमें ही सारे ऐश्वर्य हैं, इसमें ही सारे सौंदर्य हैं, इसमें ही सारे संपदा हैं, इसमें ही सारे यश हैं, ज्ञान है और त्याग है। अर्थात क्या होता है हम सब अपना प्रति ही प्रेम करते हैं और भगवान को प्रेम को भूल जाते हैं। इस भौतिक जगत में अपने प्रति अपना प्रति जो प्रेम उसको कहा जाता है अहंकार, अहंकार। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और ये सारे संसार का केंद्र हूं मैं। अर्थात मैं हूं ईश्वर, भगवान कौन है, मैं हूं भगवान। तो ये जो यहां भावना ये है माया। देखिए गीता या हमारे वेद का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बहुत विज्ञान सम्मत ज्ञान है। ये केवल मामूली विश्वास ही नहीं, ये विज्ञान सम्मत, ये साइंस। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का मतलब है साइंस। तो ये ज्ञान जो है ये है विज्ञान। और इस ज्ञान प्राप्त होने से हमें सब कुछ पता लग जाता है। तो अब हम भगवान से, भगवान ये हमें पूछना होगा सही रूप से, हार्दिक भावना लेकर सही रूप से, सही ढंग से हमें हार्दिक रूप से पूछना होगा, अनुसंधान करना होगा कि हम भगवान के ओर देख रहे हैं या अपने ओर देख रहे हैं। अगर हम अपने ओर देखते रहेंगे तो हम माया में रहेंगे, और जब हम भगवान के ओर देखेंगे तब हम हमारे आत्मिक स्वरूप में अपना स्थिति प्राप्त होगी। तो देखिए गीता का ये जो ज्ञान ये कितना सरल है, ये क्या सरल है या कठिन है? अच्छा अच्छा विशेष तुम समझा, समझा तुमने? हाँ समझ गए। अच्छा ये बच्चा भी समझ गया। तुम्हारा नाम?
गौरव।
गौरव, बहुत दिन तुमको नहीं देखा है इसलिए तुम्हारा नाम मैं भूल गया। गौरव तुम समझ गए हैं? बहुत अच्छा। तो ये बच्चे लोग भी समझ रहे हैं। शरद तुम समझ गए हो? विद्वान लोग भी समझ रहे हैं। माता जी आप समझ गए हैं? माता जी भी समझ गए। तो ये इसका मतलब है आबाल वृद्ध वनिता, मतलब ये ज्ञान बालक को भी, पंडितों को भी और वनिता का मतलब औरतों को भी बहुत आसानी से लाभ करना संभव, प्राप्त होना संभव। मतलब ये ज्ञान सबके लिए है। देखिए सत्य जो है उसको दर्शन करना क्या कठिन है? सत्य को दर्शन कठिन है, असत्य को सत्य बनाना कठिन है। जो सच नहीं है उसको सच सच बनाना बहुत कठिन है। तो तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त तो होना बहुत ही सरल है, परंतु क्या करना होगा, पहले तो अपना मुंह फेराना होगा भगवान की ओर और अपना आंखें खोलना होगा। अर्थात इस ज्ञान को समझने के लिए तैयार रहना चाहिए, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करना चाहिए। तब ये बहुत सरल भाव से, बहुत आसानी से इसका प्राप्ति संभव। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की
जय।
श्री कृष्ण भगवान की
जय।
श्री श्री राधा मदन मोहन की
जय।
गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? यस चित्रांगन।
Discuss about crime. I think that means the life act, and you said that is that the soul is within the body because of this life act. So is the life act separate from the soul?
Yeah.
And if a thing, an object doesn't have the life act, then there is no soul in it. That's the conclusion.
Yeah. When the life air is out of the body, you see, with the through the life air, the soul remains in the body or leaves the body. The soul's activities in this material nature in relation to the body is through the life air. Right? You see, there are five kinds of air, and through these five kinds of air, the activities of the bodies go on. They are pran, apan, saman, vyan, and udan. And of that, prana vayu is the vayu that keeps the soul in the body. Apan vayu causes things to leave the body, like excretion is the activity of the apan vayu. Similarly, vyan, saman, and udan, these are the different vayus that function in, say, cause the nervous system to function and the body's different activities to carry on. So the function of the body, therefore, functioning of the air is so important for the functioning of the body. It is not just a matter of oxygen and carbon dioxide. The breathing is just an external act. Inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide is just an external symptom. But main activities are performed by the body. Yes, sir.
Maharaji, जो जो एक योगी होता है वो अष्टांग योग के द्वारा अपना जो वायु है वो मस्तक के ऊपर ले जाकर फिर वो छोड़ता है, तो इसके कारण वो मुक्त होता है। तो जब हरे कृष्णा भक्त होता है, जब वो जप करता है, तो वो किस प्रकार अपनी प्राण वायु को मस्तक पर लाता है, या किस प्रकार उसकी मुक्ति या भगवत धाम कैसे?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, योगी जो है वो योग के क्रिया के द्वारा अपना आत्मा को ऊर्ध्वगामी करने का कोशिश करता है। आत्मा ऐसे भौतिक जगत का बंधन में गिरा हुआ है, और योगी अपना प्रचेष्टा के द्वारा आत्मा को, जैसे आत्मा ऊर्ध्वगामी होता है, जिसे चक्र का विकास, ओपनिंग ऑफ द चक्र ये कहा जाता है। और जैसे तुम बताया, अंत में ये जो सबसे ऊपर का जो चक्र है, जो मस्तक के ऊपर है, सहस्रार, वहाँ जब आत्मा को, चेतना को स्थापना होता है, ले सकता है तब दिव्य ज्ञान लाभ होता है, उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। और जब अंत में उन्होंने शरीर छोड़ते हैं तो ये जो ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलता है। परंतु भक्तों का ये जो भक्ति का जो क्रिया है वो वैसा नहीं। भक्त ने अपने आप कुछ करने का कोशिश नहीं करता। आत्मा को जैसे हाँ चक्रों को उन्मिलन ऐसा कुछ, और आत्मा को सहस्रार में लेकर समाधि प्राप्त होता, ये नहीं करते। उन्होंने भक्त और योगी में अंतर ये है, योगी अपना प्रचेष्टा के द्वारा आत्मा को उन्नत मार्ग में लेने का कोशिश करता है, और भक्त भगवान की कृपा की अपेक्षा करता है, खुद कुछ नहीं करता। तो ऐसे एक विचार हो सकता है, ये दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, दे सकते हैं कि भक्त और योगी में अंतर क्या है। योगी ऐसा एक व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है वो अपना प्रचेष्टा के द्वारा बहुत पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है, और अपना प्रचेष्टा के द्वारा वो करोड़पति बना है, ठीक है, वो जो कुछ किया है अपना प्रचेष्टा के द्वारा किया है। और एक व्यक्ति है जो है राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र होने के कारण वो अपने आप कुछ पैसा बनाने का कोशिश नहीं करता है, परंतु राजा का पुत्र होने के कारण सारे राज्य उसका मिल गए हैं। हाँ, तो योगी है जो अपना प्रचेष्टा के द्वारा करोड़पति बना, और भक्त है जो राजकुमार राजपुत्र है, राजा का केवल राजा का बेटा नहीं, राजाओं के राजा का बेटा बन गया। तो जो राजकुमार है उसको क्या फिर से और अपना पैसा कमाने का धंधा करना पड़ता है? कभी नहीं। तो ये है अंतर। तो अब बताओ तुम क्या करोड़पति बनना चाहते हो या राजकुमार बनना चाहते हो? तो जो बुद्धिमान है वो राजकुमार बन जाते हैं, और जो राज ये जन्म के अनुसार ही, जन्म का सूत्र से ही उसको सारे संपदा मिल गया है। ये केवल समय का अवसर है। जो राजकुमार है, जो बच्चा है, ऐसा मालूम होता है कि उसका जेब में एक पैसा भी नहीं है, है ना? परंतु जब वो जब when he becomes major, when he grows up, then the king says, okay, now you take the kingdom. Hare Krishna. Yes.
आपने संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में बताए थे, तो भगवद्गीता में क्या संबंध और अभिधेय बताए और प्रयोजन के बारे में बताया?
हाँ, प्रयोजन के बारे में बताया गया है, बल्कि उतना गूढ़ रूप में बताया गया है, ऐसे प्रकाशमान रूप से नहीं बताया, क्योंकि भगवद्गीता जो है वो शरणागति तक ही आ रहा है, भगवान का शरण ले, और भगवान का शरण लेने से क्या फायदा होता है, वो जो प्रयोजन उसका विचार बाद में हुआ है, श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से उसका बारे में। या देखो, ये जो मैं बताया संबंध ज्ञान, इसका ये संबंध के आधार पर आधारित है, भगवान के साथ जो संपर्क है उस संपर्क के अनुसार होगा। जैसे ये जो रामचंद्र जी के भक्त हैं उनके लिए ये राम है श्री रामचंद्र, जो बलराम का भक्त हैं उनके लिए राम है बलराम, राम रेवती रमन रेवती नंदन राम रेवती रमन राम, और जो जो कृष्ण भक्त हैं उनके लिए ये राम है श्री कृष्ण राधा रमन रमते ही राम। तो हमारे लिए ये राम कृष्ण, इसलिए हमारे लिए हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
इसका मतलब है राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। हरे कृष्णा या
जा बलराम के भक्तों का, लेकिन वह पे हरे का अर्थ क्या है? हाँ जो बलराम का भक्तों का राम कहता है तो हरे राम का अर्थ हुआ, हरे का अर्थ क्या बनेगा?
हरि या हरि, हरि ही बलराम है। हरि ये हरि भी हरि का संबंधन में हरे हो सकता है, और हरा या श्रीमती राधा रानी का संबंधन में हरे हो सकता है, या तो जब बलराम है या श्री रामचंद्र है तब ये हरे है हरि के संबोधन, और जब कृष्ण का संपर्क में है तो ये हरि है राधा
रानी। जो बड़े लोग का लड़का है भक्त सब कुछ मिलता है, जिस तरह भक्ति करने से समाधि होता है और प्रत्याह भी होता है, लेकिन उनका प्राणायाम कैसे होता है, श्वास कैसे नियंत्रण होता है?
श्वास के वो अपने से ही हो जाएगा, जैसे कोई जो करोड़पति है वो जब कुछ करता है उसको करने का वो लक्षण हम देखते हैं, वो कर रहे हैं, बल्कि राजकुमार का कैसे प्राप्ति होता है उसको साधारण दृष्टिकोण से उसका दर्शन संभव नहीं है। राजा ने राजा का पुत्र होने के नाते उसको सब मिल गए हैं, उसको और फिर से इतना कष्ट करके प्राणायाम करना, सांस रोकने का जरूरत। जो करोड़पति बनता है बनना चाहता है वो ना खा के ना पी के ना सो के केवल रुपए को बनाने का धंधा में लगता है ना, परंतु जो राजकुमार है वो रुपए बनाने में उसका कोई प्रचेष्टा नहीं करता, वो रुपए के बारे में सोचता भी नहीं क्योंकि उसको प्राप्ति के लिए रुपए का जरूरत नहीं होता है। वो बोलेगा मैं हमको ये चाहिए और सारे राज्य का सब आदमी उसको देने के लिए तैयार रहेगा। ये है अंतर। ओके हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच, गौर प्रेमानंदे।
महाराज की
आज शाम को मंदिर में चीनी भक्तों का कीर्तन
होगा,
ये बहुत सुंदर कीर्तन है, आप सब आना रहना और उस कीर्तन में योगदान करना। मैं देखा कि जब आप इस क्लास में आते हैं तो शाम को मंदिर में नहीं रहते, तो आज कृपा करके जद्यपि आप यहाँ आए हैं फिर भी मंदिर में भी रहेंगे।